एक डॉक्टर ने जाह्नवी के वार्ड में आते हुए कहा, मिस्टर अद्वैत को होश आ चुका है और वो किसी जाह्नवी से मिलने की जिद कर रहे हैं। ये सुनकर अमर ने गुस्से से डॉक्टर को घूरा और जाह्नवी जल्दी से उस बेड से उठ खड़ी हुई जिस पर उसे बैठा रखा था। अमर ने अगले ही पल जाह्नवी का हाथ पकड़ लिया और फिर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, जान, अगर तुम चाहती हो कि वो मरते मरते मुझे कुछ न सुने तो प्लीज उससे दूर रहना। सुनकर जाह्नवी ने जल्दी से हामी भरते हुए कहा, आप बेफिक्र रहिए, मैं उससे दूरी पर रहूंगी, प्लीज। अमर ने गहरी सांस छोड़ी और जाह्नवी को लेकर अद्वैत के वार्ड में गया। अद्वैत को मशीनों से घेर रखा था, उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था और वो अपनी भीगी पलकों को बार बार झपकाते हुए बस एंट्रेंस की तरफ देख रहा था, जैसे बस जाह्नवी का ही इंतजार कर रहा हो। जाह्नवी के जाते ही अद्वैत ने अपने मुंह से अपना मास्क उतार लिया और फिर हल्के से मुस्कान के साथ धीरे से बोला, तुम ठीक हो महबूबा? जाह्नवी ने जल्दी से हां में सर हिलाया और फिर एक नज़र अमर की तरफ देखा, जो अद्वैत की तरफ देख भी नहीं रहा था और उसका हाथ लगातार जाह्नवी के हाथ को सहला रहा था, जैसे उसे एहसास करवा रहा हो कि वो अभी भी अमर के साथ है। अद्वैत ने उन दोनों को अपने पास आने का इशारा करते हुए कहा, मैं इतनी जोर से नहीं बोल पाऊंगा कि तुम दोनों को वहां तक समझाऊं, कुछ बताना था, मेरे पास बहुत कम वक्त है, प्लीज क्या तुम दोनों यहां बेड पर आकर बैठ सकते हो? उसकी कमजोर आवाज बेहद धीमी थी, पर उसे रूम में पसरी शांति की वजह से उसकी आवाज जाह्नवी और अमर को साफ साफ सुनाई दे रही थी। जाह्नवी ने उम्मीद भरी नजरों से अमर को देखा। अमर ने आगे बढ़ते हुए एक वुडन स्टूल को अद्वैत के बेड से थोड़ा सा दूर रखा और फिर जाह्नवी को उस पर बैठने का इशारा किया। जाह्नवी ने एक गहरी सांस ली और फिर अद्वैत के पास जाकर बैठ गई। अद्वैत ने धीरे से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था और उसके बाद सच, किसी को भी सिर्फ देखने भर से उसे सच्ची मोहब्बत नहीं हो सकती है। किसी के रंग रूप से किया गया इश्क कभी सच्चा नहीं होता है, पर मैंने कभी तुम्हारे रंग रूप से प्यार नहीं किया है महबूबा। ये सुनकर जाह्नवी की आंखों में हैरानी आ गई। वहीं अमर ने गुस्से में कहा, इसका क्या मतलब हुआ? क्या सच में जाह्नवी तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी या तुम इसे पहले से जानते थे? अगर तुम ये बोलना चाहते हो तो तुम्हारे पास जिंदगी के जो 5-10 मिनट बचे हैं मैं उनको भी अभी खत्म कर दूंगा। ये सुनकर ना चाहते हुए भी अद्वैत मुस्कुरा उठा। हाँ, उसकी मुस्कुराहट बहुत हल्की सी थी, पर वो अमर की बात सुनकर अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। अद्वैत ने फिर जाह्नवी की तरफ देखते हुए कहा, अपनी तहसी से पूछना, क्या तुम्हारी कोई जुड़वा बहन थी? क्योंकि मेरी महबूबा बिल्कुल तुम्हारी जैसी दिखती थी। वे दुनिया से चल बसी, जिसके साथ ही मेरी सारी उम्मीदें भी चली गईं। मैंने जीना छोड़ दिया था, उसके बाद मैं सिर्फ पावर के लिए जीता था, जिसके लिए सबसे आसान तरीका था पॉलिटिक्स में आना, इसीलिए मैंने ये ज्वाइन किया था। और एक दिन अचानक बिल्कुल किसी सपने की तरह तुम मेरे सामने आओगी। तुम्हारे लिए ये सब कुछ यकीन कर पाना नामुमकिन था, बस इसलिए मैं तुम्हें कह नहीं पाया। पर मेरी पत्नी, मेरी महबूबा, बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती थी और मैं अपनी मोहब्बत में इतना अंधा हो चुका था कि मैं भूल गया अपनी मोहब्बत मुकम्मल करने के चक्कर में मैं किसी और की जिंदगी खराब कर रहा हूँ। आई होप तुम मुझे माफ कर दोगी। जाह्नवी को शौक पर शोक मिल रहे थे, उसके मुंह से तो एक शब्द नहीं निकल रहा था। अमर ने गुस्से से अद्वैत के पास जाते हुए कहा, अपनी ये मनगढ़ंत कहानी बंद करो, मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है। अद्वैत ने फीका सा मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें कह भी नहीं रहा कि तुम मेरी बातों पर यकीन करो, इसके सबूत तुम खुद ढूंढ सकते हो। इतना बोलकर उसने एक नज़र पूरे वार्ड को देखा और आखिरकार उसे अपने कपड़े दिखाई दिए, क्योंकि फिलहाल वो तो एक पेशेंट की ड्रेस में था। उसने अपने बेजान हाथ में जान डालते हुए उसे उठाने की कोशिश की और अपनी पैंट की तरफ इशारा किया। अमर ने उसकी उंगली के इशारे की तरफ देखा और फिर तेज कदमों से चलकर उसके कपड़ों के पास गया। उसने उसके कपड़ों में छानबीन शुरू की तो उसे अद्वैत का पर्स मिला, जिसमें उसने फोटो लगा रखी थी और उस फोटो में अद्वैत के साथ सच में जाह्नवी जैसी लड़की थी, जो मुस्कुराते हुए अद्वैत के कंधे पर अपना हाथ रखे हुए थी। पर उसका पहनावा बिल्कुल अलग था और उसकी आंखों का रंग भी नीला था। ये देखकर अमर को जैसे धक्का सा लगा था, वो गिरते गिरते बचा और फिर वो तेज कदमों से चलकर जाह्नवी के पास आया। उसने जाह्नवी को वो फोटो दिखाई, जाह्नवी की आंखें भर आईं। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, पर लाख कोशिशों के बाद भी वो खुद को रोने से नहीं रोक पाई। फिर उसने अद्वैत की तरफ देखकर कहा, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा सर्च कर दिया था। मुझे लगा कि बाकी लोगों की तरह तुम्हारी आंखों में भी सिर्फ लस्ट है, इसके सिवा कुछ नहीं। पर अब समझ आ रहा है कि तुम क्यों मुझसे दूर रहते थे, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरी फिक्र थी। मैं तुम्हारा एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगी। अद्वैत ने नामे सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं सोचोगी कि मैं तुम पर कोई एहसान किया है। भला मैं कौन होता हूँ जो तुम पर एहसान करूंगा? मैं तो बस अपनी तसल्ली चाहता था। अगर मेरे होते हुए तुम्हें कुछ हो जाता तो वैसे भी मैं जीते जी मर जाता। अब मुझे अच्छा लग रहा है, कम से कम मैं तुम्हारे किसी काम तो आया हूँ। इतना बोलने के साथ ही अद्वैत की सांसें तेज होने लगी। वहां लगी मशीनों में अजीब सी बीप बीप की आवाज आने लगी। अमर डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भाग कर गया। जाह्नवी ने भी जल्दी से आगे बढ़कर अद्वैत का हाथ पकड़ लिया। अद्वैत ने आंखें खोलकर जाह्नवी की तरफ देखा और आखिरी बार उसका नाम पुकारा, अपना ख्याल रखना। इतना बोलने के साथ ही सारी मशीनों से आती आवाज बंद हो गई, जिसका साफ मतलब था अद्वैत अब इस दुनिया से जा चुका था। अमर के साथ डॉक्टर भी वार्ड के अंदर आए, पर तब तक सब कुछ शांत हो चुका था। जाह्नवी की आंखों से गर्म आंसू निकलकर गिर रहे थे। हाँ, उसे दुख था इस बात का कि वो शख्स मर गया जो उसकी इतनी फिक्र करता था। दिल के एक कोने में अद्वैत के लिए अजीब सी हमदर्दी पनपी थी कुछ पलों के लिए। तभी अचानक अमर ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जिसके साथ ही जाह्नवी ने हड़खड़ाकर अमर की तरफ देखा और अगले ही पल उसके सीने से जा लगी।
जानवी ने रोते हुए कहा, आज सिर्फ अद्वैत शेखर की मौत हुई है, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने एक साथ दो इंसानों को खो दिया है। एक ऐसी बहन जिससे मैं कभी मिली भी नहीं, उसके लिए भी मेरे दिल में अजीब सा दर्द हो रहा है। अमर ने जानवी की पीठ सहलाते हुए कहा, हो सकता है वो सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी बन रहा हो। हम इस बारे में मीनाक्षी से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें अद्वैत के अंतिम संस्कार की तैयारी करनी है, क्योंकि इसकी फैमिली में कोई नहीं है। किशनगढ़, जानवी ने हामी में सर हिलाया, जिसके बाद अमर ने उसका चेहरा अपने हाथों में भराते हुए उसके माथे पर किस कर लिया। जानवी और अमर जैसे ही वार्ड के बाहर निकले, उन्हें समर्थ, रजत और कल्याण सिंह दिखाई दिए। समर्थ जल्दी से जानवी के पास आया और उसके गले लगाते हुए बोला, थैंक गॉड भाभी तुम ठीक हो, मैं तो डर ही गया था। जानवी ने हल्के से मुस्कुराकर धीरे से समर्थ का सर सहलाया और फिर उसे खुद से अलग किया और मुस्कुराते हुए बोली, आपके भाई के होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता है। ये सुनकर समर्थ कैसे मुस्कुराया। वहीं रजत ने भी एक चैन की सांस लेते हुए कहा, चलो अच्छा हुआ, इतने दिनों से हम अपने दुश्मनों को ढूंढ रहे थे और सब एक साथ ही निपट लिए, मेरे सर से तो बोझ हल्का हो गया। अमर ने धीरे से कहा, डैड अद्वैत जानवी को बचाने के लिए मर गया और अब हम चाहते हैं कि उसका अंतिम संस्कार भी हमारी तरफ से हो।
सुनकर उन सब लोगों ने एक साथ अमर और जानवी को हैरानी से देखा। जानवी ने जल्दी से कहा, डैड दादू प्लीज, उस इंसान ने सच में मेरी जान बचाई है, वरना आज मैं आप लोगों के सामने जिंदा नहीं होती। कल्याण सिंह ने उसे डांटते हुए कहा, ठीक है अपने मुंह पर ऐसे अपशब्द मत मतलब, हम उसका अंतिम संस्कार करते हैं, चलो। इसके बाद वे सब लोग एक साथ अद्वैत का अंतिम संस्कार करने के लिए काम में जुट गए। दीक्षांत ने पंडित जी को कॉल किया और फिर अमर और समर्थ दोनों एम्बुलेंस में अद्वैत के साथ गए ताकि रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार हो पाए। अद्वैत के अंतिम संस्कार के बाद जानवी और अमर दोनों एक साथ गाड़ी में आ रहे थे और बाकी लोग अपनी अपनी गाड़ियों में। जानवी भी बेचैनी से अमर की तरफ देखते हुए कहा, अमर मुझे अभी जानना है अपनी बहन के बारे में। ये सुनकर अमर ने गहरी सांस ली और एक नज़र जानवी की तरफ देखा और फिर अपना फ़ोन निकालकर उसमें मीनाक्षी का नंबर डायल किया। कुछ देर बाद मीनाक्षी ने डरते हुए फ़ोन उठाया और फिर जल्दी से बोली, हेलो अमर बेटा, क्या फिर से त्रिशा ने कोई गलती कर दी है? फ़ोन स्पीकर पर होने की वजह से जानवी को भी सब सुनाई दे रहा था। उसने हैरानी से अमर की तरफ देखा, उसे तो पता ही नहीं था अमर ने त्रिशा को रिहा भी करवा दिया है। उसके दिल में एक अजीब सी तसल्ली आई थी। अमर ने गहरी आवाज़ में कहा, नहीं त्रिशा ने कोई गलती नहीं की है, मुझे तुमसे ही कुछ पूछना है। ये सुनकर मीनाक्षी की आवाज़ में और भी ज़्यादा डर गया। उसने घबराते हुए लड़खड़ाती जुबान में कहा, मैं कोई गलती कर दी क्या? अमर ने कहा, नहीं, पर अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो ज़रूर तुम अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रही हो। मीनाक्षी ने जल्दी से कहा, नहीं अमर, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे पता है तुम क्या क्या कर सकते हो, मैं तुम्हें कभी झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करूंगी। अमर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो बताओ क्या जानवी की कोई जुड़वा बहन थी? अमर की ये बात सुनकर दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी पसरी रही और जानवी की बेचैनी जैसे और भी ज़्यादा बढ़ गई। वो बेबस हो रही थी मीनाक्षी के मुंह से सच सुनने के लिए। अमर ने गुस्से में कहा, क्या तुम्हारी जुबान को लकवा मार गया है? तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मीनाक्षी जल्दी से खुद को होश में लाते हुए कहा, हाँ जानवी की एक जुड़वा बहन थी, उसके पास आँखें नीली थीं, वो बिल्कुल जानवी की तरह दिखती थी, पर जिस दिन जानवी का जन्म हुआ था उसी दिन वो अस्पताल से किडनैप हो गई थी। उसके बाद हमने उसे बहुत ढूंढा, वो कहीं नहीं मिली, पर तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? अमर ने मीनाक्षी का जवाब दिए बिना ही फ़ोन कट कर दिया और फिर जानवी की तरफ देखा, जिसकी आंखों में मोती जैसे आंसू भर आए थे। अमर ने उसे रोने से नहीं रोका और वो तब तक रोती रही जब तक रावत मेंशन नहीं आ गया। घर के सामने गाड़ी रुकी और अमर अपनी सीट से निकलकर बाहर उसने जानवी की तरफ का दरवाज़ा खोला और फिर जल्दी से जानवी को अपनी बाहों में उठा लिया। वो उसे अंदर ले जाते हुए धीमी आवाज़ में बोला, जान रोना बंद करो, जिसको तुमने कभी देखा नहीं, जिससे तुम कभी मिली नहीं, उसके लिए शोक मनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, चलो अच्छे बच्चों की तरह चुप हो जाओ। जानवी ने आंखें बंद करते हुए अपना सर अमर के सीने पर रख लिया। अमर उसे कमरे के अंदर ले गया और फिर आहिस्ता से बेड पर बैठा दिया। इसके तुरंत बाद उसने फ़ोन निकालकर इस बार घर की सर्वेंट को कॉल किया था कि वो उन दोनों के लिए गर्म चाय देकर जाए, क्योंकि इन सब के बीच बहुत तेज़ सरदर्द होने लगा था। अमर ने कुछ पल जानवी को अकेला छोड़ा और फिर खुद बालकनी में चला गया। वो फ़ोन पर दीक्षांत से बातें कर रहा था। दीक्षांत फ़िलहाल पुलिस स्टेशन में था और उन सब लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था जो फ़िलहाल इस शूटआउट में मारे गए थे। पर इससे अमर और दीक्षांत को कोई नुकसान नहीं होने वाला था, क्योंकि अमर रावत का खौफ फैला हुआ था। ऊपर से इन पुलिस वालों ने भी इतनी सारी गलतियाँ कर रखी थीं कि वो चाहकर भी अमर और दीक्षांत को सजा नहीं दिलवा सकते थे। और दूसरी बात, जो गुंडे मारे थे उनके परिवार का भी कोई अता पता नहीं था, तो अमर और दीक्षांत पर केस करने वाला भी कोई नहीं था। दीक्षांत ने अमर का फ़ोन उठाते हुए कहा, एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। दो महीने बाद अमर और जानवी का कमरा। अमर बेड पर बैठा अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था। ठीक उसी वक्त जानवी नहाकर बाथरूम से बाहर आई। उसके हाथ में कुछ तो था जिसे वो छुपाते हुए धीमे कदमों से चलकर अमर के पास आ रही थी। अमर ने गर्दन टेढ़ी करते हुए जानवी को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने गुलाबी रंग की नेट की साड़ी पहनी थी जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। जानवी धीरे से अमर के पास बैठी और फिर एक हाथ से उसका चेहरा छूते हुए बोली, अमर क्या आप अपनी लाइफ में कभी मुझसे ज़्यादा प्यार किसी और से कर सकते हैं? अमर ने आंखें छोटी करते हुए कहा,
तुम बाथरूम से कौन सा नशा करके बाहर आई हो? ऐसा क्यों पूछ रही हो? मुझे नहीं लगता मैं किसी और से तुम्हारे जितना प्यार कर सकता हूँ, पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? क्या तुम किसी और से प्यार कर सकती हो? ये सुनकर जानवी के होठों पर शरारती मुस्कान आ गई। उसने अपने होठों पर जुबान फेरते हुए कहा, कोई आ गया है मेरी जिंदगी में जिसे मैं आपसे भी ज्यादा प्यार करना चाहती हूँ। अभी तक हुआ तो नहीं है वो प्यार, पर मैं चाहती हूँ जल्द ही हो जाए। ये सुनकर अमर की आंखें फैल गईं। उसने जल्दी से जानवी की कलाई पकड़कर उसे अपने करीब खींचा और अगले ही पल उसके होठों को अपने मुंह में भर लिया। वो काफी गुस्से से उसे किस कर रहा था, जिससे झटपटाते हुए जानवी ने उसे खुद से अलग किया। अमर ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, जान तुम होश में हो ना? क्या बोल रही हो? सुबह सुबह तुम्हें हो क्या गया है? और जो भी तुम्हारी जिंदगी में आया है उसे तुम्हें? बोलते बोलते अमर रुक गया, क्योंकि जानवी ने उसके होठों पर अपना हाथ रख लिया था। जानवी ने अमर की आंखों में आंखें डालकर नामेसर हिलाते हुए कहा, खबरदार जो उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला, मैं आपके हाथ पांव तोड़ डालूंगी अगर आपने कहा कि आप उसे कुछ करेंगे। ये सुनकर तो अमर की आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो चुकी थीं। उसने कुछ कहना चाहा, उससे पहले ही जानवी ने अपनी मुट्ठी को खोलते हुए अमर को कुछ दिखाया और अगले ही पल खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, क्या अपने बच्चे से आप मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करेंगे और आप उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? अमर ने नामे सर हिलाया और अगले ही पल जानवी को अपने गले से लगाया और फिर उसके माथे को चूमते हुए बोला, नहीं जान, मैं तुमसे ज्यादा प्यार किसी से नहीं कर पाऊंगा और अपनी बेबी को नुकसान पहुंचाने के बारे में तुम्हें सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। ये सब कुछ अमर गहरी सांसों के साथ बोल रहा था, जैसे उसे बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है। जानवी ने प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए कहा, पहले तो आप एक गहरी सांस लीजिए, इस बात को हजम करिए कि आप डैडी बनने वाले हैं। अमर हल्के से मुस्कुराया और फिर उससे अलग होते हुए धीरे से उसका गाल चूमते हुए बोला, चलो बाकी सबको बताकर आते हैं, फाइनली कल्याण सिंह की बरसों की मुराद पूरी हो चुकी है और साथ में ये कहानी भी पूरी हो चुकी है। धन्यवाद दोस्तों मेरा इतने लंबे सफर में साथ देने के लिए। मिलते हैं एक और खूबसूरत सी कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।